दिन भर 19 जुलाई शुक्रवार, सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर की मुश्किलें बढ़ी। भैंस चुराने के आरोप में बिहार के छपरा में 3 लोगों की पीट पीट कर हत्या।
फैमिली पे क्या गुजरे, कोई इंसाफ करेगा? इतनी बेदर्दी से मारा है सब, किस लिए? क्योंकि मुस्लिम थे इसलिए।
इंसानियत की हद हो गया, बस आदमी सोचता है मुसलमान है मार दो।
विवेचना में चर्चा, पाकिस्तान के कैप्टन शेर खां की, जिन्हें भारत की सिफारिश पर मिला निशान हैदर सम्मान।
इसमें लिख के मैंने इसकी जेब में डाल दिया है कि कैप्टन कर्नल शेर खान ऑफ 12 एंड अलाइव हैज फॉट वेरी ब्रेवली एंड ही शुड बी गिवन हिज ड्यू फॉर हिज ब्रेवरी।
सब विस्तार से, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। कर्नाटक के राज्यपाल वजूभाई वाला ने मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी के लिए नई समय सीमा तय करते हुए आज का दिन खत्म होने तक विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा है। ये राज्यपाल की ओर से तय की गई दूसरी समय सीमा है। इससे पहले उन्होंने शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे तक का समय दिया था। बिहार के सारण जिले में गुरुवार देर रात 3 लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। ये घटना जिले के बनियापुर थाना अंतर्गत पिठौरी नंदलाल टोला गांव में हुई। ग्रामीणों ने 3 मृतकों पर मवेशी चोरी करने का आरोप लगाया था। छपरा के पुलिस अधीक्षक हरिकिशोर राय ने मॉब लिंचिंग की घटना से इनकार किया है। उनका कहना है कि इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और स्थिति अभी नियंत्रण में है। अमरीकी नौसेना ने होमरूज जनसंधि के ऊपर ईरान के ड्रोन को मार गिराने का दावा किया था, मगर ईरानी अधिकारियों ने अमेरिका के इस दावे को गलत बताया है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का कहना है कि वे अपनी बात के समर्थन में वीडियो भी जारी करेंगे। अमेरिका का कहना था कि उसके युद्धपोत USS बॉक्सर ने अपने बहुत करीब आए एक ड्रोन को मार गिराया था, मगर ईरान के उप विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची का कहना है कि संभव है कि अमरीकी युद्धपोत ने गलती से अपना ही ड्रोन मार गिराया हो। ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर सेना के एक प्रवक्ता के हवाले से कहा गया,
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح کشورمان اعلام کرد پهپادی که ترامپ
مدعی ساخت شده است. کی ورشت پروکتا نے کہا ہے کہ ٹرمپ جس ڈرون کو گرانے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ اپنا مشن پورا کر کے سرکشت لوٹ آیا ہے۔ یہی نہیں، امریکہ کے دعوے کے ٹھیک الٹ ان کے یدھ پوت یو ایس ایس باکسر کے ساتھ کسی طرح کی جھڑپ نہیں ہوئی ہے۔ یہ تھے ایران کے سرکاری ٹی وی چینل کے اینکر کے شبد۔ نیدرلینڈ میں سپریم کورٹ نے 1995 میں सेब्रेनिका में बोसियाई सर्ब बलों द्वारा मारे गए 80,000 मुस्लिमों में से 350 की मौत के लिए डच सरकार को भी जिम्मेदार माना है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से सुरक्षित घोषित की गई जगह पर डच सैनिकों ने उन्हें जनरल रातको म्लादिच की सेना को सौंप दिया था। इस मामले में सुनाए गए आदेश में कोर्ट ने कहा कि डच सेना का इन लोगों को इस तरह सौंपना गलत था। निचली अदालत में भी ये फैसला सुनाया गया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने डच सरकार पर जवाबदेही को 30 से घटाकर 10% कर दिया। इस घटना में मारे गए एक शख्स की मां ने बताया,
ovo sve što je se nama desilo ne postoji ni jedna gumica na svijetu koju mogu izbrisati svoju odgovornost।
हमने जो कुछ सहा है, इस दुनिया में कोई नहीं है जो हमें उसके दर्द से उबार सके। इस घटना के साक्षी हैं हम। हमें मालूम है कि डच सैनिकों ने क्या भूमिका निभाई है और उन्होंने क्या किया है। मुझे पता है कि वे मेरे बेटे और बाकी लोगों को बचा सकते थे। ये थे 1995 में बोस्नियाई सर्ब सैनिकों के हाथों मारे गए एक मुस्लिम युवक की मां के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। अफगानिस्तान में काबुल यूनिवर्सिटी के पास हुए एक धमाके में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है और 30 से ज़्यादा लोग घायल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि धमाका दक्षिणी गेट के पास हुआ, जहां पर छात्र परीक्षा देने के लिए इंतजार कर रहे थे। पुलिस टीम के पास एक जगह लगाए गए बम को निष्क्रिय करने में कामयाब रही है। इस धमाके की जिम्मेदारी तालिबान ने ली है। तालिबान और इस्लामिक स्टेट समूह काबुल में भीषण हमलों को अंजाम देते रहे हैं। इससे कुछ घंटे पहले ही तालिबान चरमपंथियों ने कंधार शहर के पुलिस मुख्यालय पर हमला कर दिया था, जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई थी और 80 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। BBC समाचार।
ये BBC हिंदी सेवा है। आप सुन रहे हैं शाम की सभा। दिन भर रेडियो के साथ साथ BBC हिंदी .com पर भी। मेरा नाम है संदीप सोनी। कर्नाटक में राज्यपाल और गठबंधन सरकार के बीच की दूरी बढ़ने की वजह से मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राज्यपाल ने कर्नाटक की गठबंधन सरकार पर एक ऐसी तलवार लटका दी है जो किसी भी वक्त गिर सकती है। अगले कुछ घंटे कर्नाटक की सरकार के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
आज सुबह जब विधानसभा के कार्यकलाप शुरू हुए तब से ही मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी ने खास तौर से कहा कि उन्हें राज्यपाल ने कल रात संदेश भेजा था कि आज 1:30 बजे तक विश्वास मत हमें लेना ही चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि जब BJP के दिवंगत नेता अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो विश्वास मत पर बहस 7 दिन तक चला था, तो उन्होंने सवाल उठाया कि राज्यपाल आज ही समय सीमा क्यों लगा रहे हैं। जब राज्यपाल का दूसरा संदेश आया कि वो आज ही विश्वास मत लें, तो कुमार स्वामी ने कहा कि उन्हें दूसरी प्यार की चिट्ठी आई है। लेकिन राज्यपाल पर सबसे शक्तिशाली हमला कानून मंत्री कृष्णा बैरागौड़ा से आया। उन्होंने कहा, राज्यपाल अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। मई 2018 में राज्यपाल ने येदियुरप्पा को 15 दिन का समय दिया था विश्वास मत लेने के लिए, और हमें 15 घंटों का समय दिया जा रहा है। इसमें हम साजिश नहीं देखें तो क्या देखें? ये थे कृष्णा बैरागौड़ा के शब्द। कृष्णा बैरागौड़ा ने उच्चतम न्यायालय का फैसला अरुणाचल प्रदेश सरकार के मामले भी विस्तार से पेश किया और कहा कि राज्यपाल को कोई अधिकार नहीं होता है कि वो मुख्यमंत्री को कह सके कि समय सीमा में विश्वास मत लें। कृष्णा बैरागौड़ा के भाषण के बीच एक और सदस्य श्रीनिवास गौड़ा ने 3 BJP के विधायकों पर ये इल्जाम लगाया कि उन्हें 30 करोड़ रुपयों का प्रस्ताव लाया था ताकि वो इस्तीफा दें और BJP में शामिल हों। BJP के सदस्य JC मधुस्वामी ने राज्यपाल के विषय पर कहा, हम राज्यपाल के निर्देश का समर्थन करते हैं। अगर ये सरकार राज्यपाल की इज्जत करती है तो वो फौरन उनके निर्देश का पालन करेगी। अभी 1:30 बज गया है और हम डिवीजन मांग रहे हैं। ये थे JC मधुस्वामी के शब्द। मधुस्वामी के बाद स्पीकर रमेश कुमार ने डिवीजन और विश्वास मत पर स्पष्टीकरण की।
प्रतिपक्ष नायक मधुस्वामी और प्रेस पर डिवीजन नम नियमावली प्रकार
हम ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि डिवीजन फौरन नहीं हो जाता है। पहले विचार विमर्श होगा और उसके बाद बेल बजाई जाएगी और फिर दरवाजे बंद किए जाएंगे और फिर से सदस्यों की गिनती होगी। ये थे स्पीकर रमेश कुमार के शब्द। अभी ये स्पष्ट होते जा रहा है कि राज्यपाल और गठबंधन सरकार के बीच की दरार बढ़ती जा रही है, खासकर जब राज्यपाल ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि उन्हें संकेत मिल रहे हैं कि सदस्यों का व्यापार किया जा रहा है। अगले 2-3 दिन में ये स्पष्ट हो जाएगा कि कर्नाटका में BJP की सरकार बनेगी या विधानसभा को निलंबित एनिमेशन में रखी जाएगी। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
BBC इंडिया बोल। गोवा में कांग्रेस छोड़ BJP में शामिल हुए 10 विधायक। कर्नाटक में भी कांग्रेस और JDS के विधायक कथित तौर पर पाला बदलने को तैयार। ऐसे में उठ रहा है सवाल, क्या दल बदल विरोधी कानून पर फिर से विचार करने की है जरूरत? आप क्या सोचते हैं? इस बार BBC इंडिया बोल में इसी विषय पर होगी चर्चा। अपनी राय रखने के लिए मुफ्त फोन करें 1811 7000 और 1811027001 पर।
BBC इंडिया बोल।
बिहार के छपरा जिले में मवेशी चुराने के संदेह में भीड़ ने 3 लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी। छपरा पुलिस अधीक्षक ने इसे मॉब लिंचिंग मानने से इनकार किया है, जबकि मृत लोगों के परिजनों का आरोप है कि उन्हें मुसलमान होने की वजह से, महादलित होने की वजह से निशाना बनाया गया। छपरा से नीरज सहाय की रिपोर्ट।
बिहार की राजधानी पटना से करीब 80 किलोमीटर उत्तर छपरा जिले में शुक्रवार सुबह 3 लोगों की पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतकों में एक अल्पसंख्यक समाज से है तो बाकी के 2 महादलित समुदाय से आते हैं। तीनों छपरा जिले के बनियापुर थाना के पैगंबरपुर गांव के नौशाद आलम, राजू नट और विदेशी नट हैं। नौशाद पिकअप वैन चलाकर अपनी जीविका चलाते हैं तो राजू और विदेशी नट मवेशी का कारोबार करते हैं। घटना के बारे में विस्तार से नौशाद आलम के बड़े भाई मोहम्मद आजाद बताते हैं।
वहाँ से फोन भी आया था कि जल्दी आओ, ये लोग यहाँ से गाड़ी लेके गया, वहाँ पहुँचने से पहले ही 20-25 आदमी वेट कर रहा है, पहले ही गाड़ी घेर करके पकड़ के इन लोगों ने बुरी तरह से बेइंसानियत मारा है। क्या क्या किया है अब तो क्या हम कहें, मतलब इतना बेदर्दी, इंसानियत की हद हो गई है। बस आदमी सोचता है मुसलमान है मार दो, बस यही कारण है और कोई कारण नहीं है।
करीब 500 घरों वाले संपन्न पैगंबरपुर गांव की मिश्रित आबादी में गम और गुस्से का माहौल है। नौशाद की भतीजी नेहा तबस्सुम बताती है कि उसके चाचा बहुत मेहनती थे और इस सीमित संसाधनों के बीच भी अपने बेटे को हैदराबाद में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवा रहे थे।
4 बजे गए सुबह, मतलब यही सब धंधा है हम लोग का, कसाई लोग का, चोरी का इल्जाम में। अगर चोरी करने रहता तो 4 बजे जाते तो सुबह हो गई, सुबह में कोई चोरी करने जाता और वो भी उस लड़के को लेके जाते चोरी करने जिसकी शादी 10 दिन बाद है, वो भी मर गया, उस लड़की वाले पे क्या गुजर रही होगी। उसको लेके मेरे अंकल लेके जाते, उनकी एक लड़का एक लड़की, उनके फैमिली पे क्या गुजरे, कोई इंसाफ करेगा। इतनी बेदर्दी से मारा है सब, किस लिए, क्योंकि मुस्लिम थे इसलिए। वैसे ही उस दिन भी वो कांड हुआ था, वो अंसारी ब्यादर जो था, क्या हम मुस्लिम का जीने का हक नहीं है, क्या कसाई होना ये जुर्म है। वो कमा दमा के अपने बेटा को, एक एक लौता बेटा उसको पढ़ा के इंजीनियर बना रहे, एक बेटी उसकी शादी कर दिए।
उधर राजू नट के घर पर शव के इर्द गिर्द लोगों का हुजूम जमा था, पत्नी बदहाल थी। यही दृश्य विदेशी नट के घर का भी था। विदेशी के पिता गफूर नट बताते हैं कि उसकी शादी नवंबर माह में होनी थी।
बेटा 4 बजे करीब में नलदाल टोला पिठौरी जाते में न कुछ ना लगो पर जाके हमारा बेटा राजू भाई के हमारा बेटा के धके मुआद लगे।
विदेश लड़के हम शादी के दिन रख ले रही है कब शहर में वीरेंद्र राय के एजेंसी में से गाड़ी ले ले रही है नया परसों 75 बांध देवे बगुए परसों वेलकम शहर शादी लगे रही है।
उधर दलित आबादी वाले घटना स्थल पटौरी नंदलाल टोला के 15 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गांव के युवा राकेश राम और मोहित राम तीनों पर पशु चोर होने का आरोप लगाते हैं।
2-3 लोग आए थे चोरी करने के लिए और वो जो भैंस थे उसको गाड़ी पे बैठा रहे थे, भैंस गाड़ी पे से कूद गई नीचे, तो उसके बाद हल्ला हुआ, सारे लोग आए, पब्लिक पकड़ के यहाँ पे बांध रखे थे। बांधने के बाद पुलिस को फोन किया गया, पुलिस को आने में लेट हो गया, 6 बजे पुलिस आई, पब्लिक आए, पब्लिक सारे पब्लिक मिल के मारे यहाँ पे रास्ते पे और मार कर 2 यहाँ पे डेड कर गए, एक जिंदा था तो एक उठा कर लेकर गए।
मेरा नाम मोहित कुमार राम, वो आए लोग 2 बजे और बकरी ले गए और भैंस खोल रहे थे, भैंस चढ़ा रहे थे गाड़ी में जिसमें पारी चढ़ा लिया था ऊपर, दोबारा में जा रहा था भैंस चढ़ाने के लिए। उसके बाद में लोग जगे और चिल्लाए कि चोर चोर, उसके बाद हम लोग उसको पकड़े और लिया दुआर पर पूछताछ किए, उसको बांधे और पूछताछ किए तो नहीं बताया, तो पब्लिक आए गांव को और उसको मारने लगे।
पिछले साल नवंबर माह में सीतामढ़ी में जैनुल अंसारी की भीड़ द्वारा हत्या के बाद यह राज्य में दूसरी घटना है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब देखना है कि सरकार इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने में कब और कितना सफल हो पाती है। नीरज सहाय, BBC छपरा।
दिन भर शॉर्टवेव 31 और 25 मीटर बैंड यानी 9460, 9510, 11795, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
युद्ध के मैदान में ऐसे मौके कम आते हैं जब विरोधी सेना किसी सैनिक की बहादुरी और जीवटता को न सिर्फ स्वीकार करे बल्कि उसकी सिफारिश पर उसे देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार भी दिया जाए। साल 1999 की कारगिल की लड़ाई में ऐसा ही हुआ जब भारतीय सेना की सिफारिश पर कैप्टन कर्नल शेर खां को पाकिस्तान का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निशान हैदर दिया गया। कैप्टन शेर खां की कहानी बता रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
ऐसा बहुत कम देखने में आता है कि विपक्षी सेना किसी सैनिक की बहादुरी की दाद दे और उसकी सेना को लिखकर कहे कि इस सैनिक की वीरता का सम्मान किया जाना चाहिए। 1999 के कारगिल युद्ध में ऐसा ही हुआ जब टाइगर हिल के मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना के कैप्टन कर्नल शेर खान ने इतनी बहादुरी से लड़ाई लड़ी कि भारतीय सेना भी उनके सामने नतमस्तक हो गई। उस लड़ाई को भारत की ओर से कमांड कर रहे ब्रिगेडियर MPS बाजवा याद करते हैं।
बाकी सारे काले सलवार कमीज में थे और ये जो है ऑफिसर, मैं कहा ये अफसर होगा क्यों, जो ट्रैक सूट में थे, 2 अफसर थे। बाद में हमें पता चला कि एक मेजर इकबाल है जो कि स्पेशल सर्विस ग्रुप कमांडो फोर्सेस का था, और एक था कैप्टन करनाल शेर खान जो कि 12 नलाई का था, वहां से जो 4875 की तरफ से आए थे, और उसने जो लीड किया अटैक को। तीसरी बार वो हमें धकेल के हेलमेट से लेके दोबारा इधर इंडिया गेट की तरफ हम पीछे विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि हमारे दो जेसीओ वहां खत्म हो गए और ऑफिसर बहुत क्रिटिकली वाउंडेड था, इसलिए हमें विड्रॉ करना पड़ा जो 20 आदमी आगे भेजे थे। रियान जी बात ऐसी थी, जब ये खत्म हुई तो मैं कायल था उस अफसर का, क्यों जो नॉर्मली मैं 71 वॉर कभी लड़ा हुआ हूँ बांग्लादेश में और मैंने कभी पाकिस्तान ऑफिसर को लीड करते नहीं देखा अभी तक। इसमें हैरानगी की बात थी कि ये ऑफिसर 3 बार उनको दोबारा इकट्ठा करके लाया था और उनको लीड कर रहा था, उनको अपनी गिलकत की भाषा में बोल के हमें समझ लग रहा था क्या कह रहा है, पर उनको लीड करके इतने बड़ा सीरियसली और बड़ी बहादुरी दिखाई कि इसने हमें वहां से नीचे लेके आके इंडिया गेट तक ले आया। अगर वो पुराना खासा ऐसी बात होती तो ये रीइंफोर्स कर जाता और ये हिस्ट्री या कोई और होती दशा।
हाल ही में कारगिल पर एक किताब कारगिल द अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वॉर लिखने वाली रचना बिष्ट रावत बताती हैं।
कैप्टन कर्नल शेर खान नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के, वहां पर 5 पोजीशंस थी जहां पर उन्होंने पोस्ट्स बना रखी थी और वो डिफेंड कर रहे थे टाइगर हिल को, और जितने भी आर्मी के टॉप ब्रास हैं वो सब ओपनली ये कहते हैं कि बहुत मुश्किल था टाइगर हिल को वापस लेना, बहुत बहादुर थे वो और बहुत ही अच्छे सिपाही थे। 8 सिख को टास्क मिला था टाइगर हिल पे अटैक करने का और वो बिल्कुल उनसे हो नहीं पाया, जबकि वो भी बहुत बहादुर सिपाही थे और इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग विंटर क्लोदिंग फिर भी वो अच्छे से लड़े थे। फिर 18 ग्रेनेडियर को भी उस टास्क पे लगा दिया गया। फाइनली दे मैनेज्ड टू रेस्ट वन ऑफ द पोजीशंस। तो ये कॉन्स्टेंटली अटैक करते रहे जबकि इतनी बड़ी संख्या में अब इंडियन आर्मी वहां आ चुकी थी। इन स्पाइट ऑफ दैट उनको शायद ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई कि मेरे को जो मेरे देश ने काम दिया था करने के लिए वो मैं नहीं कर पाया, और जो लोग ये बैटल देख रहे थे जो इंडियन सोल्जर से लड़ रहे थे तो वो सब कहते हैं कि ये सुसाइडल था जो वो कर रहे थे, वो खुद जानते थे कि इसमें सक्सेस नहीं हो सकता क्योंकि दे वर कम्प्लीटली आउटनंबर्ड, बट इन स्पाइट ऑफ दैट उन्होंने रिट्रीट नहीं किया और वो बार बार अटैक करते रहे जब तक कि वो मरे नहीं।
कैप्टन कर्नल शेर खान ने लगभग बाजी पलट दी थी, लेकिन तभी एक भारतीय सैनिक कृपाल सिंह ने उन्हें अपनी मशीन गन का निशाना बनाया।
ऑफिसर को अखीर पे 10 गज से मैंने फिर वो लड़का जो हमारा था एक स्पाइस कृपाल सिंह वुंडेड था, पर वो उठ के और उन्होंने बाकियों ने बस्ट मार के बड़ी मुश्किल से उसको खत्म किया। उसी टाइम पर ही वो जो अटैक है पीटर आउट हो गया। पर इसकी बहादुरी देख के मैंने बोला कि जो सिविलियन पोर्टर्स भेज के उसकी बॉडी नीचे मंगवाई, मैं कहा जो वो है ट्रैक सूट वाला वो जो लड़का सामने लीड कर रहा था वो कोई भी हो उसको लाओ, को बाकियों को तो दफनाया वहां पर हमने जितनी भी बॉडीज थी, पर इसकी बॉडी स्पेशली नीचे ला के अपने ब्रिगेड हेडक्वार्टर में मैंने रखवाई। उसकी फिर जेब में से हमने लेटर्स वगैरह सारी निकाल के पढ़ी, ऐसे के पता चला कि हमें कि ये कैप्टन करनाल गिलगित का रहने वाला था, एक गांव का छोटे से गांव का कैप्टन था वो। मैं जी साहब से बात किया, मैं कहा मैं चाहता हूं कि एक चिट में लिख के मैंने इसकी जेब में डाल दिया है कि कैप्टन करनाल शेर खान ऑफ 12 NLI हैज फॉट वेरी ब्रेवली एंड ही शुड बी गिवन हिज ड्यू फॉर हिज ब्रेवरी। तो इतनी चिट लिख के मैंने उनके जेब में डाल दी।
कैप्टन कर्नल शेर खान का जन्म उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के एक गाँव नवा किले में हुआ था। उनके दादा ने 1948 के कश्मीर अभियान में भाग लिया था। उन्हें वर्दी पहने हुए सैनिक पसंद थे। उनके जब एक पोता हुआ तो उन्होंने उनका नाम कर्नल शेर खान रखा।
शेर खान का नाम ही कैप्टन कर्नल शेर खान था, जो हमेशा आई वॉज इनिशियली वेरी कंफ्यूज्ड कि ये कैप्टन थे या कर्नल थे। तो फिर बाद में पता चला कि वो जब पैदा हुए तो उनके माता पिता ये चाहते थे कि ये फौज में जाएं और कर्नल की रैंक तक तो जाएं ही जाएं, तो उन्होंने उनका नाम ही कर्नल रख दिया। तो शुरू से ही शायद उनमें भी ये जज्बा था कि वो सिपाही बनेंगे।
जब कर्नल शेर खान का नाम रखा गया तो उनके पिता और दादा को ये अंदाजा नहीं था कि इस नाम की वजह से उनके पोते की जिंदगी में कई उलझने आएंगी। कारगिल पर मशहूर किताब विटनेस टू ब्लंडर कारगिल स्टोरी अनफोल्ड्स लिखने वाले कर्नल अशफाक हुसैन लिखते हैं।
कर्नल शेर खां के नाम का हिस्सा था और वो उसे बहुत गर्व से इस्तेमाल भी करते थे। जब वो फोन उठाकर कहते थे लेफ्टिनेंट कर्नल शेर स्पीकिंग, तो फोन करने वाला समझता था कि वो कमांडिंग ऑफिसर से बात कर रहा है और वो उन्हें सर कहना शुरू कर देता था। तब शेर मुस्कुरा कर कहते थे कि वो लेफ्टिनेंट शेर हैं। मैं अभी आपकी बात कमांडिंग ऑफिसर से करवाता हूँ।
कर्नल शेर ने अक्टूबर 1992 में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की थी। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने दाढ़ी रखी हुई थी। उनसे कहा गया कि वो दाढ़ी कटवा दें, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनके आखिरी सत्र में उनसे फिर कहा गया कि आपका प्रदर्शन अच्छा रहा है, अगर आप दाढ़ी कटवा दें तो आपको अच्छी जगह पोस्टिंग मिल सकती है, लेकिन उन्होंने फिर इनकार कर दिया। उनसे एक साल जूनियर रहे कैप्टन अलीउल हसनैन बताते हैं।
पाकिस्तान मिलिट्री अकादमी में सीनियर रैगिंग के दौरान जूनियर्स के लिए गालियों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन मैंने शेर खां के मुंह से कभी कोई गाली नहीं सुनी। उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी और वो दूसरे अफसरों के साथ स्क्रैबल खेला करते थे और अक्सर जीतते भी थे। जवानों के साथ भी वो बहुत आसानी से घुल मिल जाते थे और उनके साथ लूडो खेलते थे।
कैप्टन कर्नल शेर खां में शुरू से ही देशभक्ति का जज्बा था। इसका जिक्र करते हुए उनके छोटे भाई ने एक बार कहा था,
हमारे भाई हमेशा ये कहा करते थे, मैं दो शेर पुश्तो के और सुनाता हूँ ताकि हमारे भाई पठान जो है वो भी समझ लें। मुटे खाओ रे वतन बपिवर नकम कपसर दमक टोल वतन खतनशी औखपल खाओ रब पखपल विनो पालम कहाजत कुर्बानी जमाद तनशी। तर्जुमा कुछ इस तरह है, अगर सारी दुनिया जन्नत बन जाए तो मैं अपने वतन की मुट्ठी भर मट्टी इसके बदले में नहीं दूंगा। अगर इसे मेरे खून की जरूरत पड़ जाए इसकी अब्यारी मैं अपने खून से करूंगा और अपने जान का नजराना देकर इसकी हिफाजत करूंगा।
जनवरी 1998 में वो डोमल सेक्टर में तैनात थे। जाड़े में जब भारतीय सैनिक पीछे चले गए, उनकी यूनिट चाहती थी कि उस ठिकाने पर कब्जा कर लिया जाए। अभी वो इस बारे में अपने आला अफसरों से इजाजत लेने के बारे में सोच ही रहे थे कि कैप्टन कर्नल शेर खान ने सूचना भिजवाई कि वो चोटी पर पहुंच चुके हैं। कर्नल अशफाक हुसैन अपनी किताब विटनेस टू ब्लंडर कारगिल स्टोरी अनफोल्ड्स में लिखते हैं,
कमांडिंग ऑफिसर दुविधा में था कि क्या करें। उसने अपने आला अधिकारियों तक बात पहुंचाई और उस भारतीय चौकी पर कब्जा जारी रखने की इजाजत मांगी, लेकिन अनुमति नहीं दी गई और कैप्टन शेर से वापस आने के लिए कहा गया। वो वापस आए, लेकिन भारतीय चौकी से कई स्मृति चिन्ह जैसे कुछ ग्रेनेड, भारतीय सैनिकों की कुछ वर्दियां, वाइकर गन की मैगजीन, गोलियां और कुछ स्लीपिंग बैग उठा ले आए।
4 जुलाई 1999 को कैप्टन कर्नल शेर को टाइगर हिल पर जाने के लिए कहा गया। वहां पर पाकिस्तानी सैनिकों ने रक्षण की 3 पंक्तियां बना रखी थीं, जिनको कोड नेम दिया गया था 129 ए बी और सी। उनके दूसरे नाम थे कलीम, काशिफ और वकील पोस्ट। भारतीय सैनिक 129 ए और बी को अलग थलग करने में कामयाब हो चुके थे। बीबीसी से बात करते हुए कर्नल अशफाक हुसैन ने कहा,
He was a very brave man. He was never found complaining against the hardship.
वो बहुत बहादुर शख्स थे। उन्होंने कभी किसी तकलीफ की शिकायत नहीं की। हमले से एक रात पहले उन्होंने सारे सिपाहियों को जमा कर शहादत पर एक तकरीर की। सुबह 5 उन्होंने नमाज पढ़ी। सुबह वो मेजर हाशिम के साथ 129 बी पर ही थे कि भारतीय सैनिकों ने उन पर जवाबी हमला किया। खतरनाक हालात से बचने के लिए मेजर हाशिम ने अपने ही तोपखाने से अपने ऊपर गोले बरसाने की मांग की। जब विपक्षी सैनिक बहुत पास आ जाते हैं तो अक्सर उनसे बचने के लिए इस रणनीति के तहत इस तरह की मांग करते हैं। हमारी तोपों के गोले उनके चारों तरफ गिर रहे थे। पाकिस्तानी और भारतीय जवानों की हाथों से लड़ाई हो रही थी। तभी एक भारतीय जवान का एक पूरा बर्स्ट शेर खां को लगा और वो नीचे गिर गए। शेर खां को उनके साथियों के साथ शहादत मिली। बाकी पाकिस्तानी सैनिकों को तो भारतीय सैनिकों ने वहीं दफना दिया, लेकिन उनके पार्थिव शरीर को भारतीय सेना पहले श्रीनगर और फिर दिल्ली ले गई।
भारतीय सेना ने दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग से संपर्क कर उन्हें कैप्टन कर्नल शेर खां का पार्थिव शरीर देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने उसे लेने से इनकार कर दिया।
पाकिस्तान ने बोला कि हमारे आदमी को लड़ाई नहीं है, तो आप कैसे बोल रहे हो कि ये बॉडी है किसी की और कर्नल कैप्टन कर्नल शेर खां की बॉडी है या किसकी है। हमने उनके लेटर्स दिखाए, उनके लेटर्स साथ साथ थे कि ये है, ऑफिसर लड़ा है, बड़ी बारी से लड़ा है और आप इसकी बॉडी वापस ले लो। फिर बाद में जब बॉडी वापस गई, उसको मंजूर था, उसको रिकॉग्निशन मिलनी नहीं थी। अगर मैं ना बॉडी भेजता उसकी वापस नीचे ना मंगवाता, तो आज उसका नाम भी कहीं ना होता। तब उसको निशाने हैदर दिया गया, सबसे बड़ा अवार्ड। उसके फादर ने, उन्होंने हमें लेटर लिखी इंडियन आर्मी को कि मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आपने ऐसा किया। हमारा गांव जो है पूरा, पूरे का पूरे गांव में बिजली पहुंच गई है, पूरे गांव में रोड आ गई है, उनकी गांव की नुहारी बदल गई है। ये आपका ही एक देन है कि मेरे बेटे को आपने अवार्ड दिलवाया।
बाद में उनके बड़े भाई अनवर शेर ने एक वक्तव्य भी जारी किया।
अल्लाह का शुक्र है कि हमारा दुश्मन भी कोई बोझदल दुश्मन नहीं। अगर लोग कहे कि इंडिया बोझदल है, मैंने कहूंगा नहीं, क्योंकि उसने ऐलानिया कह दिया कि कर्नल शेर हीरो है।
18 जुलाई 1999 को पाकिस्तान कैप्टन कर्नल शेर खां का पार्थिव शरीर लेने के लिए तैयार हुआ। उसे पहले कराची, फिर इस्लामाबाद और फिर पाकिस्तानी वायुसेना के विमान से उनके पुश्तैनी गांव ले जाया गया, जहां हजारों लोगों ने आंसू भरी आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। कई साल बाद उनके भाई अनवर शेर ने एक समारोह में बोलते हुए कहा था,
असल में मैं तकरीबन 1974 से बाहर, मोबाइल वहाँ काम नहीं कर रहे जहाँ मैं रहता हूँ, तो मैं आया सौ PCO में। मेरे वालिद मेरे भाई की तीसरे दिन थी, तो वहाँ पर जब फोन मैंने किया, आकर मैं गाड़ी में बैठा, एक छह जो होटलों में जो काम नहीं करते यहाँ पर कैफेटेरियो में, एक बच्चा था सा छोटा था, तो एक रेडी वाले के साथ वो खड़ा था, बातें कर रहा था। मैं उसकी तरफ देख रहा था कि ये क्या बोलते हैं। तो रेडी वाले को बताते कि पता है एक घंटे के अंदर अंदर आर्मी ने नवाकली से लाइन लाकर उसके गांव तक बचा दिया टेलीफोन की। तो मैंने उस बच्चे से पूछा कि इधर आओ बेटा, क्या बात है, क्या हुआ है? तो उसने कहा तुम्हें पता नहीं है? मैंने बोला नहीं। बोलते हमारे शेर मामू शहीद हुए। मैंने बोले शेर कौन था? कहते कि ये तो हमारे सवाबी का शेर था। तो मैंने सोचा आप क्यों इतने खुश हैं? कहते हैं इतनी मर्दानगी से वो शहीद हुआ है कि हमें फहर है। आज भी आप जाकर वही हमारे इलाके में, हमारे तकरीबन अफीसर साहब सारे आए थे उसके जनाजे पे, एक एक बच्चे के मुंह से यही आवाज आती है, यही बोलते कि मैंने कैप्टन शेर बनने के है, तो हमें इससे ज्यादा खुशी और कोई नहीं।
तेरा है हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाए सलाम कहती है।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।
और अब खेल समाचार। सूर्यांशी पांडे स्टूडियो में आ चुकी हैं। सूर्यांशी जी, खेल के मैदानों में आज क्या हलचल है?
आज बैडमिंटन के कोर्ट पर हलचल मचाई पीवी सिंधु ने, जो क्वार्टर फाइनल का मुकाबला लड़ रही थी जापान के खिलाड़ी नोजोमु ओकुहारा से। और आप गेस करिए रिजल्ट क्या रहा,
आप ही बताइए।
सो क्वार्टर फाइनल के इस मुकाबले में पीवी सिंधु ने दिल थाम कर बैठी है, नोजोमी ओकुहारा को हरा दिया है और क्वार्टर फाइनल में 21-14, 21-7 से उन्होंने ये मुकाबला जीता है। और अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला होगा चीन के खिलाड़ी शेन यूफे के साथ,
इंडोनेशिया ओपन में।
हाँ, इंडोनेशिया ओपन में। तो वहीं वो एक लौती खिलाड़ी हैं भारत की तरफ से, किदाम्बी श्रीकांत पुरुष वर्ग में हार चुके हैं हांगकांग के खिलाड़ी कालोंग अंगस के अगेंस्ट। और अगर हम क्रिकेट की ओर नज़र डालें तो वहाँ पर ICC ने मैच के दौरान स्लो ओवर रेट के कारण कप्तान को मिलने वाली सजा में बदलाव किया है। अब टीम का कप्तान निलंबित नहीं होगा, अब स्लो ओवर रेट पर कप्तान के साथ साथ पूरी टीम के अंक काटे जाएंगे। यह नियम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी लागू हो जाएगा और लागू होने का 1 अगस्त से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होने वाले एशेज सीरीज में ये लागू होगा।
सूर्यांशी पांडे से खेल समाचारों के बाद चलते चलते खास खास खबरें एक बार फिर सुनते हैं भूमिका राय से।
BBC समाचार। कर्नाटक के राज्यपाल वजूभाई वाला ने मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी के लिए नए समय सीमा तय करते हुए आज का दिन खत्म होने तक विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा है। बिहार के सारण जिले में गुरुवार देर रात 3 लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। ये घटना जिले के बनियापुर थाना अंतर्गत पिठौरी नंदलाल गाँव टोला में हुई। अमरीकी नौसेना ने होमरूज जलसंधि के ऊपर ईरान के ड्रोन को मार गिराने का दावा किया था, मगर ईरानी अधिकारियों ने अमरीका के इस दावे को गलत बताया है। अफगानिस्तान में काबुल यूनिवर्सिटी के पास हुए एक बम धमाके में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। सऊदी अरब सरकार की सलाहकार परिषद ने कहा है कि प्रशासन को ज्यादा सचेत रहना चाहिए क्योंकि इस्लामी कानून का सम्मान सुनिश्चित करना है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान। अगला प्रसारण नमस्कार भारत भारतीय समय अनुसार सुबह 6:30 बजे। फिलहाल संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए इजाजत, लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए bbchindi.com हमेशा आपके साथ है। शुभ रात्रि।